Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Paramashuddhaya Pratasmaraniyam Sri Mahamandaleshwar Swami Prem Puriji Maharaj. परमशुद्धय प्रतस्मरणीय महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए कठोपनिषद की दूसरी वल्ली प्रथम अध्याय अन्यच्छेयो अन्य दुतैव प्रेय ते मे उभे नानार्थे पुरुषम सीनितः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यह कुप्रेयो वर्णीते। आचार्ययम बालक नचिकेता के भीतर परमात्मा को पाने की जो अभिप्सा है उसको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बालक नचिकेता की प्रशंसा करने लगे और ये प्रशंसा मार्ग की कठिनता और उसके चयन को लेकर के हो। हमारा जो जीवन है जीवन होने से श्रेष्ठ नहीं होता है। हम अपने जीवन में किसका चयन करते हैं इससे हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है। हमारे पास पैर हैं, बुद्धि है, हाथ हैं, आंखें हैं, कान हैं, इतने से हम श्रेष्ठ नहीं होते हैं। ये तो उपकरण है, ये तो साधन है, लेकिन इन साधनों से हम क्या चाहते हैं, हम किसका चयन करते हैं, हम किसका ग्रहण करते हैं, इससे हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ के ग्रहण करने से जीवन श्रेष्ठ होता है। केवल जीवन श्रेष्ठ नहीं होता है, नचिकेता शब्द का भी अर्थ यही है, चिनोति न चिनोति इति नचिकेता। सामान्य जो जीव होता है ना, वो चिनोति चयन करता है, और वो क्या चयन करता है, शब्द स्पर्श रूप रस बाहर की दुनिया के पदार्थों का चयन करता रहता है। और नचिकेता का अर्थ है न चिनोती, जो संसार के पदार्थों का चयन नहीं करता है, अपितु जो परमात्मा के पाने योग्य जो साधन है उसका चयन करता है, इसीलिए वो नचिकेता है। और एक सामान्य व्यक्ति जीव इसीलिए है, वो संसार के पदार्थों का चयन करता है। इसलिए हमारे पास जीवन एक साधन है, हमारा जीवन एक रास्ता है, जीवन का मिलना मंजिल नहीं है, और इससे हमें चुनना है, हमें चयन करना है कि हम किसको पाना चाहते हैं और उस पाने का साधन क्या है। हमारे जीवन में तीन चीजें होती हैं, कर्म शक्ति, जड़ शक्ति और ज्ञान शक्ति। जीवन में तीनों हैं। जड़ शक्ति का अर्थ है यहां हमारे पास ये शरीर है, मकान है, भौतिक पदार्थों का संकलन है, ये जड़ शक्ति है। और दूसरी क्रिया शक्ति, उस जड़ को प्राप्त करने के लिए हम क्रिया करते हैं, उसको पाने के लिए हम जो भी गतिविधियां करते हैं वो हमारी क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति का अलमन लेकर हम जड़ शक्ति का संकलन करते हैं, हम कोशिश करते हैं मकान बनाने की, कोशिश करते हैं धन कमाने की, कोशिश करते हैं बहुत सारे लोगों का संग्रह करने की। ये क्रिया शक्ति के द्वारा जड़ शक्ति का संकलन है और इस शरीर के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण होता है, हृष्ट हो, पुष्ट हो, सुंदर बने। इस जड़ शरीर को भी और भी हम सुंदर बनाने के लिए हम क्रिया शक्ति का उपयोग करते हैं और इस क्रिया शक्ति के और जड़ शक्ति के बीच में एक तीसरी भी शक्ति काम करती है और वो शक्ति है ज्ञान शक्ति। ज्ञान के बिना हम क्रिया के द्वारा जड़ को निर्मित नहीं कर सकते हैं। ज्ञान के बिना हमारी क्रिया अंधी है। जैसे हम चल रहे हैं लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो हम चलेंगे तो जाएंगे कहां? पहले ज्ञान है, रास्ते का ज्ञान, और उसके बाद फिर शरीर में क्रिया, और फिर पहुंचेंगे आप अपने लक्ष्य। आपका हाथ आगे बढ़ा कुछ खाने के लिए, लेकिन पहले ज्ञान तो होना चाहिए ना, क्या खाना है हमको, हमें क्या नहीं खाना है पहले खा ले। प्रणभुज महाराज जी श्री कहते पहले खा ले और उसके बाद देखे कि ये क्या है। भाई पहले आप खाओ और उसके बाद जानो, पहले जान लो, विचार करो। एक बार हम लोग ऋषिकेश के ऊपर गंगा किनारे गुफा में रहा करते थे। मेरे साथ एक वैष्णव महात्मा थे, दो गुफाएं थी, दोनों में रहते, बड़े बहुत प्रिय महात्मा थे, बहुत भजन करते थे। मैं कैलाश आश्रम ऋषिकेश में जाता था पढ़ने के लिए, रहते थे गुफा में, जाते थे पढ़ने के लिए। मैं पढ़ने के लिए चला गया, महात्मा जी वो जंगल गए घूमने और जंगल में उनको कोई कंद मिला, बहुत सुंदर कंद, देखने में इतना सुंदर, आलू से थोड़ा बड़ा था वो, आलू से बड़ा, और ले आए और उन्होंने सोचा कि पूर्णवानंद जी आए तब तक इस कंद की परीक्षा कर लेते हैं, कोई खाने की अच्छी चीज होगी तो फिर उनको भी खिला देंगे। और उन्होंने क्या किया, उस कंद को काटा, छीला और केवल एक पीस काट करके उन्होंने मुख में रखा और एक ही बार चबाया, और जैसा चबाया वैसे के वैसे वो उन्होंने उसको बाहर निकाला और बोलती बंद, और जीभ सूझ करके इतनी मोटी हो गई। मैं आया और मैंने कहा ये क्या हो गया, और मुख से लाल निकल रहा था, बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ में। और मैंने कहा ये पहले बंदर को खिला देते, आप बंदर को खिला दीजिए, बंदर ने यदि खाया तो आप खा सकते हैं, क्योंकि तीसरी आंख उसके पास है, वो सूंघ लेता है और सूंघते ही जान लेता है कि ये पत्ती स्वास्थ्य के लिए अच्छी है कि नहीं है, और ना हो तो वो छोड़ देता है, वो नहीं खाता। उसके बाद फिर मैंने सरसों का तेल लेकर के उनके जीभ में खूब मला, फिर घंटों धीरे 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 3 दिन में जाके महात्मा जी ठीक हो गए। तो पहले जान लेना चाहिए था ना, कोई अनजान कंद है, अनजान जड़ी है, उसके उपयोग के पहले थोड़ा खोज कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये आपको ज्ञान शक्ति किस लिए दी भगवान ने? क्रिया शक्ति का आश्रय लेने के पहले हमें ज्ञान शक्ति का आश्रय लेना चाहिए। आप कोई भी काम करें उसके पहले ज्ञान का आश्रय लें, और ज्ञान का आश्रय लेने के बाद जो हम क्रिया करते हैं वो क्रिया हमारी समझदारी भरी होती है। इसलिए क्रिया के द्वारा, क्रिया शक्ति के द्वारा वस्तु को प्राप्त करना है तो ज्ञान शक्ति की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो ये जो क्रिया है हमें जड़ता में ले जाती है, क्रिया हमें दुख में ले जाती है, क्रिया हमें अशांति में ले जाती है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि यहां दो चीजें ज्ञान शक्ति हैं, और दूसरी ये क्रिया और जड़ पदार्थ अज्ञान की शक्ति है। जो भौतिक पदार्थ है ना, ये सारी अज्ञान की ही शक्तियां, चाहे क्रिया के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं, वस्तु को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी शक्तियां अज्ञान की शक्तियां। और ये तीसरी जो शक्ति है ना, ये ज्ञान की शक्ति है। और जहां पर भी बाहर के भौतिक पदार्थों को हम पाना चाहते हैं, वे सारे पदार्थ क्रिया करके ही पाए जाते हैं। आप दुनिया के किसी भी पदार्थ को पाना चाहते हैं, वस्तु को, व्यक्ति को, उसको पाने के लिए क्रिया चाहिए, क्रिया सापेक्ष उसका पाना है। और जो वस्तु क्रिया सापेक्ष होती है, वो वस्तु समय सापेक्ष होती है। जैसे आपको घर से यहां तक आना था, तो आपसे दूर था ना, वो देश सापेक्ष, माने किसी दूसरे देश में, आपका घर एक अलग देश में है और यहां सत्संग किसी अलग देश में है, तो देश सापेक्ष है, अलग भिन्न देश है। और भिन्न देश में स्थित वस्तु को प्राप्त करना हो तो आपको क्रिया की आवश्यकता है, वो क्रिया सापेक्ष, उसका पाना क्रिया सापेक्ष, आपको आना ही पड़ेगा, आपको चलना ही पड़ेगा। और जो प्राप्ति देश और क्रिया सापेक्ष होती है ना, वो समय सापेक्ष होती है, उसके लिए समय चाहिए। बिना समय आप उस देश में नहीं पहुंच सकते हैं। जितनी वहां क्रिया होगी, उन क्रिया को संपादित करने के लिए आपको समय चाहिए। इसलिए 90 न्याय में कहा, जन्यानाम जनक कालो जगताम आश्रयोवत। ये काल, ये समय जो है, वो जन्य पदार्थों का भी जनक है। आप समय के बिना किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते हैं। हर चीज समय में रहती है और समय से पैदा होती है। आप बोलते हैं ना कि भाई हम उसको नहीं कर पाए, क्यों? बोले समय नहीं था। माने वस्तु को पैदा करने के लिए समय भी चाहिए, समय सापेक्ष वस्तु का पैदा होना है। और जितना समय चाहिए ना, उतना चाहिए चाहिए। आप उससे कम समय देंगे ना, तो वस्तु का पैदा होना संभव नहीं है। इसलिए भागवत ने तीन चीजें बताए, काल, कर्म और स्वभाव। वस्तु के उत्पत्ति में तीन चीजों का प्रतिपादन किया है, काल, कर्म और स्वभाव। स्वभाव वस्तु में स्वभाव है, जैसे दही बनने का स्वभाव है दूध में। आप जल से दही बना सकते हैं क्या? आप दही बनाना चाहते हैं तो आप घी से बना सकते हैं क्या? दही ऐसे दही से निकला है, वो दही से ही निकला है, दही से ही मक्खन निकला है। लेकिन उस मक्खन को आप पुनः दही बनाना चाहो तो नहीं बनेगा। स्वभाव, स्वधर्म दूध का है दही बनने का। आपको तेल निकालना है तो आपको तिल चाहिए, तेल निकालना है तो आपको मूंगफली चाहिए। आप बालू से तेल निकाल सकते हैं क्या? आप मिट्टी से निकाल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? उसमें स्वभाव नहीं है ना। तेल का स्वभाव केवल तिल का है, केवल मूंगफली का है, दूसरे का नहीं। ये स्वभाव प्रत्येक वस्तु में अपना एक स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुसार ही वो दूसरे वस्तु को पैदा कर सकती है। कारण में कार्य को पैदा करने का स्वभाव है। इसलिए सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि वस्तु को पैदा करना हो तो स्वभाव चाहिए। भगवान ने स्वभाव का आश्रय लिया। कारण में कार्य को उत्पन्न करने वाला जो सामर्थ्य है उसका आश्रय लिया, लेकिन स्वभाव होने मात्र से कार्य पैदा होता है क्या? आपके घर में तीली रखी है तो अपने आप तेल निकलेगा? दूध होगा तो क्या अपने आप दही बनेगा? इसलिए कहते हैं कि कर्म का आश्रय लिया। फिर भगवान ने कर्म मैंने क्रिया शक्ति का आश्रय दिया। आपको दूध को जमाना पड़ेगा, फिर उसको गर्म करना पड़ेगा, उसके अंदर थोड़ा सा मट्ठा डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप उसको बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। इसलिए एक क्रिया शक्ति जड़ शक्ति के परिवर्तन के प्रति हेतु है, क्रिया शक्ति वस्तु के रूपांतरण के प्रति हेतु है। आप वस्तु को रूपांतरित कर सकते हैं क्रिया का आश्रय लेकर। आप तिल से तेल निकाल सकते हैं क्रिया का आश्रय लेकर। क्रिया का आश्रय लिए बिना वहां रूपांतरण संभव नहीं है। आप क्रिया का भी आश्रय ले रहे हैं और वस्तु में स्वभाव भी है कार्य को उत्पन्न करने वाला, लेकिन आपके पास समय न हो तो आप बीज बोते हैं जमीन में और बोने मात्र से वो अंकुर बन जाता है क्या? वो बीज फल तक पहुंच जाता है क्या? आपने दूध में दही डाला थोड़ा और उसी समय वो दही बन जाता है? नहीं, वहां स्वभाव भी है, वहां क्रिया भी है, विक्रिया भी है। आपने उसको क्रिया दी है, आपको उसको चला दिया, आपने जैसे उसमें गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा हुआ और दही डाला, आपने उसको चला दिया, उसके रूपांतरण की क्रिया आपने आरंभ कर दी, लेकिन उतने से वो दही नहीं बनता है। वहां फिर क्रिया के साथ समय चाहिए, समय सापेक्ष। वस्तु का पैदा होना स्वभाव, क्रिया और समय सापेक्ष, इन तीनों के बिना वस्तु का पैदा होना संभव नहीं। और जितना समय चाहिए ना उतना ही समय चाहिए, न उससे कम और न उससे ज्यादा, जितना समय चाहिए। इसलिए जड़ शक्ति क्रिया के द्वारा रूपांतरित हो जाती है, जड़ शक्ति क्रिया के द्वारा पाई जाती है, लेकिन उसके साथ ज्ञान शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। समय के साथ साथ तीसरी ज्ञान शक्ति का भी होना आवश्यक है। इसलिए नव्य न्याय दर्शन में कार्य को पैदा करने के लिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक माना है, ज्ञान का होना बहुत आवश्यक। समष्टि कार्य के प्रति, समष्टि ईश्वर का ज्ञान कारण है, और व्यष्टि कार्य के प्रति व्यष्टि जीवात्मा के ज्ञान कारण है। ईश्वर को सृष्टि का निर्माण करना है और वो कारण को न जाने तो अज्ञानी ईश्वर कारण समुदाय होने के बाद भी सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए वहां कहा स्वोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान कृतिमत्व, वहां उपादान का ज्ञान होना आवश्यक है, उस उपादान की प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। यंत्र चलाने के लिए यंत्र का ज्ञान भी तो चाहिए ना, तभी प्रोडक्शन होगा। ऐसे जीवात्मा में भी कोई छोटी सी भी चीज पैदा करनी है, वहां भी स्वोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान, वहां ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान आदमी सुई भी पैदा नहीं कर सकता है, बिना ज्ञान कुछ भी आप पैदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए आपके सामने बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती हैं, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, समय शक्ति, समय भी एक शक्ति है, समय भी एक शक्ति है। और मैं आपको बताऊं सबसे महत्वपूर्ण कोई शक्ति है तो एक नंबर की शक्ति आपकी समय शक्ति ही है। इसलिए समय को काल को ईश्वर का रूप माना गया है, समय को काल को ईश्वर का रूप माना गया। समय बहुत महत्वपूर्ण है, आप श्रवण करते हैं ना, समय बहुत महत्वपूर्ण है, बीता हुआ समय आता नहीं है, समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय ही निर्माण करता है, समय ही निर्माण करता है, वो करता है ना, और वो पालन करता भी है और संहार करता भी समय है। पच्चे थे बोला था ना, बालक नचिकेता ने बोला था ना, पच्यते सस्यमिव मर्त्यः पच्यते, पकता है और ये पकता है शब्द का जो प्रयोग किया लगता है बिल्कुल गांव में प्रयोग होने वाले शब्द का प्रयोग किया है, धान पकती है ऐसा बोला उन्होंने। मर्त्यः पच्यते सस्यमिव मर्त्यः पच्यते, सस्य माने धान, वो गांव का दृष्टांत दिया उन्होंने और गांव के शब्द का प्रयोग किया, भाव वही है, धान पकता है, धान जैसे धान पकता है ना वैसे ये मर्त्य जो जीवात्मा है ये पकता है, धान पकती है तो धान पकती है, तो धान पकती है कि धान को पकाया जाता है, काल पकाता है उसको, समय जो है ना उस धान को पकाता है, आपने बोया अंकुरित होगा थोड़ा आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, समय जो है ना उसको पकाता है, उसको अग्नि नहीं पकाती, जैसे आप चावल पकाते हैं कि नहीं, आप चावल पकाते हैं तो अग्नि पकाती है ना उसको, अग्नि जैसे जैसे आप देते जाते वैसे वैसे वो धान चावल पक जाता है, और जो खेत में बोया हुआ धान पकता है वो कैसे पकता है, समय से एक एक दिन आप देखना वो पकता जाता है, और जैसे फल आते हैं तो आप क्या बोलते हैं, पक गया, अच्छा वो पक गया कि मर गया, वो पक गया कि मर गया, आप बोलते धान पक गई, भैया धान पक गई कि वो सूख ये शब्द बहुत सुंदर, धान का अर्थ होता है जो पकने के बाद मर जाती है, धान का अर्थ होता है कि जो एक बार आपको फल देने के बाद चना जैसे पकता है तो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, वो पेड़ जो है ना खत्म हो जाता है, पक गया, खत्म होने का अर्थ क्या है, बस बस आपने गेहूं बोआ ढाई महीने के बाद आप क्या बोलते हैं, पक गया, पक गया मतलब वो खत्म हो गया, अब काटो इसको, अब वो सूखने लगता है, बीज को पैदा करके वो खत्म हो जाता है, इसी को धान बोलते हैं, और ये समय है, ये समय ने क्या किया, उसको बीज तक पहुंचा दिया और उसको पका दिया, पका दिया मतलब उसको बीज ला दिया और उसको खत्म कर दिया, इसलिए मर्त्यः शब्द का प्रयोग किया। सस्य यथा मर्त्यः, सस्य धान जिस प्रकार मर जाता है, पकता है मैंने मर जाता है समय पर, ऐसे जीवात्मा भी समय पर क्या होता है, पकता है ना, पक गए बाल पक गए है ना, पक गए मतलब आप समझ रहे हैं ना, पक गए हमारे दांत, पक गए मतलब आंखें पकने लगी, कान पक रहे हैं हमारे, या पैर भी पकने लगे, घुटने में दर्द होने लगा, अब हम चेयरमैन बन गए, हर आदमी को चेयरमैन बनना पड़ता है कि नहीं, लोग बोलते महाराज हम नीचे नहीं बैठ सकते घुटने में दर्द, आप चेयरमैन बन गए मैंने पक गए, आप आपके पैर पक रहे हैं, ये पूरा जो जीवन है पकता जाता है, पकने का अर्थ आप समझ गए ना, समय के अनुसार ये सारी चीजें पकती जाती हैं, और इसमें बुरा कुछ नहीं है, इसमें बुरा कुछ नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं, पकने से डरना नहीं है, क्योंकि पकना जीवन का अनिवार्य सत्य है, धान बोया है तब तो पकेगा ही, धान बोया है किसान ने तो पकेगा जरूर, लेकिन अपने को इस पकने के परिवर्तन को समझना है और कहीं अटकना नहीं, हमें इसको रास्ता बनाना है, इसको मंजिल नहीं समझना है, हम शरीर को मंजिल समझते हैं, यही तो हमारे जीवन की कमी है, हम शरीर को मंजिल समझते हैं कि हम शरीर को रास्ता समझते हैं, ये शरीर रास्ता है, उस तत्व को पाने का रास्ता, यही आंख छोटी सी लेकिन यही परमात्मा का द्वार है, यही कान छोटे से लेकिन यही कान परमात्मा के द्वार है, यही जीभ छोटी सी है लेकिन परमात्मा का द्वार है, यही दो पैर छोटे छोटे हैं लेकिन आप बद्रीनारायण पहुंच सकते हैं, आपको यही पैर वैष्णव देवी पहुंचा सकते हैं, वृंदावन पहुंचा सकते हैं, अमरनाथ पहुंचा सकते हैं, कितने महत्वपूर्ण पैर हैं। ये साधन है, हमें वहां तक पहुंचाने के साधन है, इसमें अटकना नहीं है। इसको साधन, साधन का अर्थ होता है उसका उपयोग करना है, वहां अटकना नहीं है। इसलिए यहां दो चीजें हैं, कर्म शक्ति, वस्तु शक्ति और समय शक्ति। इन तीनों का आश्रय, ज्ञान शक्ति का आश्रय लेकर यहां रास्ता बनाना है। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक श्रेय रास्ता और दूसरा प्रेय रास्ता। और भगवान ने आपको दिया है ज्ञान शक्ति, अब आपको उपयोग करना है। हमें किधर जाना है और किधर नहीं जाना है, क्या चयन करना है और क्या चयन नहीं करना है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होता है, समझदार, वो ज्ञान शक्ति का उपयोग करते हुए अन्यत श्रेयो अन्य दुतैव प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषम सीनिता। अब आपके सामने बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे प्रलोभन हैं, नानार्थे, नाना माने अनेक अर्थ हैं, अर्थ माने प्रयोजन, और जो प्रयोजन नहीं है वो भी प्रयोजन की तरह है। ये संसार के पदार्थ प्रयोजन नहीं होते कई बार, लेकिन वो प्रयोजन की तरह सामने आते हैं। दुनिया हमको आकर्षित करती है, ये भौतिक पदार्थ हमें आकर्षित करते हैं, और जब आकर्षित करते हैं तो हितकर बनकर कि अहितकर बनकर। आपके सामने कोई भी दुनिया की चीज आती है ना, तो वो इतनी आकर्षक बनकर आती हैं कि वो हमें हितकरी मालूम पड़ती हैं। भगवान श्री राम के सामने स्वर्ण मृग आया, बड़ा सुंदर उदाहरण है, सोने का मृग। और सीता जी ने देखा, सीता जी ने प्रार्थना की प्रभु से, ये स्वर्ण मृग मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आपके सामने स्वर्ण मृग आए तो आप क्या करोगे, खरीदना चाहोगे? पहली बार सोने का मृग होता ही नहीं, होगा तो किसी म्यूजियम में होगा, होगा तो किसी शोरूम में होगा। कोई ऐसा स्वर्ण मृग, सोने का मृग और जंगल में चरता हुआ, हुंकार भरता हुआ, कुलाचे मारता होगा, कभी आएगा क्या सोने का? और जब वो आएगा तो सोने का होगा क्या? लेकिन शास्त्र तो यही कहता है कि वो सोने का मृग था। और सीता जी के सामने सोने का मृग आता तो क्या बोलती क्या कि तीर कमान लेके मारो?